हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 9, 10 और 11। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को श्रवण करने से पहले हृदय से समस्त भौतिक आसक्ति और बुद्धि से भौतिक विचारों का परित्याग करके मंगलाचरण करेंगे, ताकि गुरु और कृष्ण की कृपा से हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा, पीताम्भरधारुण बिम्बफलाधरोष्टा, पुरीन्द्रसुन्दरमुखा हरविन्दनेत्रा, कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जानि। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति ये स्तवे, वेदे साङ्गपत् क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा, ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदु सुरासुरगणा, दीवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिके, पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं, वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। पहला स्कंद चौथा अध्याय श्लोक नंबर 9। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सोनक मुनि कह रहे हैं,
अभिमन्यु सुतं सुतं प्राहुर् भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि चक्रिणीहिनः। अभिमन्यु सुतं सुतं प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि चक्रिणीहिनः। अभिमन्यु सुतं सुतं प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि चक्रिणीहिनः। अभिमन्यु सुतं सुतं प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि चक्रिणीहिनः। अभिमन्यु सुतं सुतं प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि चक्रिणीहिनः।
शब्द का अर्थ, अभिमन्यु सुतं अर्थात अभिमन्यु के पुत्र को, सूत हे सूत गोस्वामी, प्राहु कहा जाता है, भागवतोत्तमम अर्थात भगवान का प्रथम श्रेणी का भक्त, तस्य जन्म महाश्चर्यम, तस्य मन उसका जन्म महाआश्चर्यम अत्यंत ही आश्चर्यजनक, कर्माणि च गृणीहिनः, कर्माणि अर्थात कर्म च तथा गृणीहि, कृपया कहिए हमसे, न मना हमसे। अनुवाद, कहा जाता है कि महाराजा परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे, कृपया उनके विषय में हमें बताइए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद महाराज द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, महाराजा परीक्षित का जन्म आश्चर्यमय है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा उनकी माता के गर्भ में की थी, उनके कार्यकलाप भी आश्चर्यजनक है क्योंकि उन्होंने गाय का वध करने के लिए उद्यत कली को प्रताड़ित किया। गाय का वध करने का अर्थ है मानव सभ्यता का विनाश। वे पाप के परम प्रतिनिधि के से गाय की रक्षा करना चाहते थे। उनकी मृत्यु भी आश्चर्यमय है क्योंकि उन्हें मृत्यु की पूर्व सूचना प्राप्त हो चुकी थी, जो किसी मर्त्य प्राणी के लिए आश्चर्यजनक है। इस तरह उन्होंने गंगा के तट पर आसीन होकर और भगवान की दिव्य लीला को सुनने हेतु प्रयाण करने की तैयारी कर ली थी। जब तक वे भागवत का श्रवण करते रहे, उन्होंने ना तो भोजन किया, ना जल ग्रहण किया, ना ही वे एक क्षण के लिए सोए। अतः उनकी सारी बातें आश्चर्यजनक हैं और उनके कार्यकलाप ध्यान से सुनने योग्य हैं। यहाँ पर उनके विषय में विस्तार से सुनने की इच्छा व्यक्त हुई है। श्लोक नंबर 10। सम्राट कस्य वा हेतु पांडूनां मानवर्धना प्रायोपविष्टो गंगायां अनादृत्या धीराश्रयम्। स सम्राट कस्य वा हेतु पांडूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गंगायां अनादृत्या धीराश्रयम्। स सम्राट कस्य वा हेतुः पांडूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गंगायां अनादृत्या धीराश्रयम्। स सम्राट कस्य वा हेतु पांडूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गंगायां अनादृत्या धीराश्रयम्। शब्दों का अर्थ, स सम्राट कस्य वा हेतु, समनवह सम्राट महाराज, कस्य किस वा अथवा हेतु कारण से, पांडुनाम मानवर्धनम पांडुओं के पुत्र का, मानवर्धनम यानी कुल को संपन्न करने वाला, प्रायोपविष्टो अर्थात बैठे तथा उपवास करते गंगायाम गंगा जी के तट पर, आदृत्य उपेक्षा करके अधिरात यानी प्राप्त किया हुआ राज, श्रेयम ऐश्वर्य। अनुवाद, वे एक महान राजा थे और उनके पास विजित राज्य का सारा ऐश्वर्य था। वे इतने वरेण्य थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी, तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठ कर क्यों आमरण अनशन करने लगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि महाराजा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्हें इस राज्य को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। उन्हें वह अपने पितामह महाराजा युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों से मिला था। इसके अतिरिक्त वे सुचारू रूप से शासन चला रहे थे, जो उनके पूर्वजों की प्रतिष्ठा के ही अनुरूप था। फलस्वरूप उनके ऐश्वर्य तथा प्रशासन में कुछ भी गड़बड़ी नहीं थी, तो फिर वे क्यों सारा राज्यपाट त्याग कर गंगा के तट पर आमरण अनशन करने लगे। यह आश्चर्यजनक है, अतएव सभी इसका कारण जानने के लिए उत्सुक थे। श्लोक नंबर 11। नामन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानीय धनानि
शत्रवः कथं सवीरः श्रियमङ्गदुस्त्यजाम् युवैषतोत्सृष्टुमाहो सहासुभिः नामन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानीयधनानि शत्रवः कथं सवीरः श्रियमङ्गदुस्त्यजाम् युवैषतोत्सृष्टुमाहो सहासुभिः नामन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानीयधनानि शत्रवः कथं सवीरः श्रियमङ्गदुस्त्यजाम् युवैषतोत्सृष्टुमाहो सहासुभिः नामन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानीयधनानि शत्रवः कथं सवीरः श्रियमङ्गदुस्त्यजाम् युवैषतोत्सृष्टुमाहो सहासुभिः नामन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानीयधनानि शत्रवः कथं सवीरः श्रियमङ्गदुस्त्यजाम् युवैषतोत्सृष्टुमाहो सुहाभिः युवैषतोत्सृष्टुमाहो सुहासुभिः शब्दकात् नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः नमन्ति अर्थात झुकते हुए यत्पाद जिनके पांव के निकेतम अर्थात नीचे आत्मनः अपने शिवाय हानीय धनानि शत्रवः शिवाय कल्याण के लिए हानीय लाकर धनानि संपत्ति शत्रवः शत्रुगण कथम सवीरः श्रियमङ्गदुस्त्यजाम् कथम अर्थात किस कारण से सवीरः वो वीर श्रियम ऐश्वर्य अंग ही दुस्त्यजाम जिसका छोड़ पाना दुष्कर है उसे युवैषतोत् युवा अर्थात युवा अवस्था ऐशत अर्थात इच्छा की उत्सृष्टुम अर्थात त्याग देने के लिए अहो अरे सह साथ असुभि यानी जीवन के अनुवाद वे इतने बड़े राजा थे कि उनके शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे और अपनी सारी संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास अलभ्य राज्य राजसी ऐश्वर्य था। तो फिर वे अपना सर्वस्व यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उनके जीवन में कुछ भी अवांछनीय नहीं था। वे नव युवक थे और शक्ति एवं ऐश्वर्य समेत जीवन का भोग कर सकते थे। अतएव सक्रिय जीवन से विराम लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता था। उन्हें राज्य कर वसूलने में कोई कठिनाई नहीं हो रही थी। क्योंकि वे इतने शक्तिशाली थे एवं इतने वीर थे कि उनके शत्रु उनके चरणों में शीश झुकाते थे और अपने ही लाभ के लिए अपनी सारी संपत्ति भेंट कर जाते थे। महाराज परीक्षित पवित्र राजा थे, उन्होंने शत्रुओं को जीत लिया था, अतएव उनका राज्य वैभव संपन्न था। उसमें प्रचुर अन्न दूध तथा धातुएं थी और सारे पर्वत तथा नदियां शक्ति से ओतप्रोत थे। फलतः भौतिक दृष्टि से सब कुछ संतोषप्रद था। अतएव इस समय में अपना साम्राज्य एवं जीवन का त्याग करने का कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए था। मुनि गण इसके विषय में सुनने के लिए आतुर थे। मूकं कुरुतु वाचालं भंगुं लंघयति गिरां यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। शौनक मुनि अपने प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज अधिक प्रश्न पूछ रहे हैं। वास्तव में भक्तों, यह वो प्रश्न है जो संसार का कल्याण करने के लिए पूछे गए हैं। यदि हमने दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 5 में एक श्लोक पढ़ा था जिसमें बताया था सूत गोस्वामी ने ऋषियों को बहुत बहुत धन्यवाद किया था, उनको साधुवाद किया था और उनको कहा था मुनय साधु पृष्ठो हम भगवते लोकमंगलम यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। अर्थात हे मुनियों, आपने ठीक ही प्रश्न किए हैं, आपके प्रश्न श्लाघनीय है क्योंकि उनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व के कल्याण के लिए हैं। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो, क्योंकि इन प्रश्नों का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है और यदि कोई कृष्ण से संबंधित बात या कृष्ण से संबंधित कोई वाक्य श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है तो सूत गोस्वामी कहते हैं ये नात्मा सुप्रसीदति। वास्तव में आत्मतुष्टि, हमें आत्मा को यदि संतुष्टि प्राप्त होगी तो उसी प्रश्न से प्राप्त होगी जिसका संबंध भगवान या उसके भक्तों के विषय में होगा। क्योंकि आज जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो एक बहुत ही आश्चर्यमय जो व्यक्ति हैं, समझो उनका पूरा जीवन ही आश्चर्यमय है, इसलिए उन्होंने श्लोक नंबर 9 में क्या कहा अब अभिमन्यु सुतम सुत प्राहुर भागवतोत्तमम। ये जो अभिमन्यु का पुत्र है वो भागवतोत्तमम, ये भगवान का प्रथम श्रेणी, भगवान के भक्त अलग अलग श्रेणी के होते हैं। कुछ हम जैसे होते हैं जो मैं अपने विषय में कहूं कि भक्ति का पता ही नहीं कि क्या है भक्ति और भक्त कहला रहे हैं। कनिष्ठ भक्तों में भी यदि हमारी संख्या आती है तो सबसे आखिर में, लेकिन कुछ कनिष्ठ होते हैं, कुछ भगवान के मध्यम भक्त होते हैं जो कि कनिष्ठ से ऊपर होते हैं और कुछ प्रथम श्रेणी के भक्त होते हैं। और ये जिस भक्त की आज बात हो रही है अभिमन्यु सुत यानी अभिमन्यु के पुत्र, अभिमन्यु कौन थे अर्जुन के, अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र, अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा और अर्जुन के पुत्र थे और आज उन्हीं अभिमन्यु सुतम सुत उनके पुत्र कौन थे महाराजा परीक्षित, जो क्या है प्राहुर भागवतोत्तम, वो भगवान के प्रथम श्रेणी के भक्त हैं, उच्च कोटि के भक्त हैं और जो भगवान के
उच्च कोटि के प्रथम श्रेणी के जो उत्तम भक्त होते हैं उनके विषय में आज प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि जब उत्तम भक्त की बात आएगी तो डायरेक्ट से वो जो संवाद होगा वो डायरेक्ट कृष्ण के विषय में होगा, और जो बात कृष्ण से संबंधित होगी उसी से क्या होगा, ये नात्मा सुप्रसिद्धि, हमारी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए ही भगवान के वास्तव में ये सब ऋषि मुनि जो बैठे हुए थे वो त्रिकालदर्शी थे, जानते थे ये सब क्यों हो रहा है और ये सब क्यों हुआ था जो अभी पूछ रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में हमारे कल्याण के लिए कि जब हम उत्तम भक्त के और भगवान के विषय में चर्चा श्रवण करेंगे तो हमारी आत्मा का कल्याण होगा। इसीलिए ये सारे ऋषि मुनि समस्त अपने कार्यों को छोड़कर यहाँ सूत गोस्वामी के समक्ष बैठे हुए और प्रश्न कर रहे हैं। तस्य जन्म महाश्चर्य, उनका जो जन्म था वो महा आश्चर्यमय था। क्यों जन्म आश्चर्यमय था? क्योंकि कुरुक्षेत्र का महाभारत जब युद्ध समाप्त हुआ तो दुर्योधन को पीड़ा में देखकर अश्वत्थामा ने सोचा, मैं किसी तरह से दुर्योधन को संतुष्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, अश्वत्थामा ने ये सोचा था कि ये पांडव हैं, पांच पांडव सोएंगे रात को और मैं उनको मार डालूंगा और दुर्योधन को इससे संतुष्टि प्राप्त होगी। परंतु जैसे कथा आप सबको पता है कि पांडवों को नहीं मार सके और पांडव के पुत्र जितने मतलब पांचों पुत्रों को उन्होंने मार दिया। जब दुर्योधन को ये पता चला तो बहुत दुख हुआ कि आपने उन मासूम आना उनको क्यों मारा, उनको मारकर क्या फायदा था, हम मतलब पांडवों को मारना चाहिए था, पांडवों को नहीं मार सके। तो फिर उसके बाद भी अश्वत्थामा को ऐसा लगा कि पांडवों के वंश में कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए, इसलिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। कहां पर? अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के गर्भ पर, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में महाराजा परीक्षित थे और अश्वत्थामा चाहते थे के पांडवों का बीच विनाश हो जाए, पांडवों के कुल में कोई भी ना बचे, जिस तरह कौरवों का पूरा वंश समाप्त हो गया उसी तरह पांडवों का भी वंश समाप्त हो जाए। परंतु जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती तब तक उसके भक्त को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। भगवान कहते हैं कौन्तेय प्रतिजानेह नमे भक्तः प्रणश्यति, हे कुंती पुत्र अर्जुन निश्चय पूर्वक घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। कथा आप सब जानते हैं, भगवान ने उत्तरा के गर्भ में उस परीक्षित महाराज की रक्षा की ब्रह्मास्त्र से जो कि अश्वत्थामा ने चलाया था। तो यहाँ पर मुनि लोग कह रहे हैं तस्य जन्म महाश्चर्यम, कितना आश्चर्यमय जन्म है उसका जिन्होंने अपने माता के गर्भ में भगवान का सानिध्य प्राप्त किया। और ना केवल जन्म, आगे शौनक मुनि कहते हैं कर्माणि च, उनके कार्य भी कितने आश्चर्यमय है। कार्य कैसे आश्चर्यमय है, तो श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर रीति से समझाया कि जब द्वापर युग के समाप्त होने के बाद कलयुग का आगमन हुआ तो महाराज परीक्षित ने एक बार देखा कि कलयुग, एक कलयुग जो कि ना एक वास्तविक स्वरूप में था, वो गाय का वध कर रहा था। तो महाराज परीक्षित ने कलयुग को प्रताड़ित किया, यानी कि उनको कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि गाय का वध करने का क्या अर्थ है, मानव सभ्यता का विनाश। वास्तव में आज अगर संसार में मानव सभ्यता का विनाश हो रहा है तो उसका कारण यह है कि गौ की हत्या हो रही है। वह राजा जो इस संसार में गाय का वध करने वाले को प्रताड़ित नहीं करता है वो सबसे बड़ा पाप का प्रतिनिधित्व कर रहा है। परंतु महाराज परीक्षित ने ऐसा नहीं होने दिया,
बोला मेरे राज्य में ऐसा नहीं होगा। कलयुग को प्रताड़ित किया और कलयुग को कहा कि तुम मेरे राज्य में नहीं आ सकते। कलयुग डर गया और फिर उनसे याचना की कि महाराज मैं किधर जाऊंगा, आपका आप तो महाराज हैं, सम्राट हैं, आपका कर्तव्य है कि संपूर्ण प्रजा की रक्षा कीजिए, मुझे भी तो कोई स्थान दीजिए। तो दिया उन्होंने स्थान, आगे हम पढ़ेंगे कि चार स्थान दिए, जहां पर जुआ खेला जाता हो, जहां पर मदिरा पान किया जाता हो, जहां पर मांस आहार किया जाता हो और जहां पर परस्त्री का संग किया जाता हो। ये चार जगह है कलयुग, तुम जा सकते हो उधर, खबरदार जो मेरे राज्य में कहीं और आने की तुमने चेष्टा की। तो कलयुग भयभीत हो गया और आगे हम इसके विषय में पढ़ेंगे। परंतु यहाँ पर क्या कह रहे हैं ऋषि मुनि, कर्माणि च गृणीहिना, हमें बताइए। और श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि परीक्षित महाराज का केवल जन्म और कर्म ही आश्चर्यमय नहीं था, बल्कि उनकी तो मृत्यु भी आश्चर्यमय थी, क्योंकि मृत्यु से पूर्व ही उन्हें सूचना प्राप्त हो गई थी जो किसी मृत्यु प्राणी यानी कि मरने वाले के लिए सबसे बड़ी आश्चर्यजनक घटना ये हो कि अभी आप स्वस्थ हो और कई दिन पहले, चार दिन पहले, छह दिन पहले या आठ दिन पहले आपको पता चल जाए कि आपकी मृत्यु होने वाली, कितनी आश्चर्यमय घटना है। और ये कितनी सुंदर भी हो कि हमें पता चल जाए, फिर हम वाइंड अप करने का समय मिले ना हमें, जिस तरह महाराज परीक्षित ने किया। श्री प्रभुपाद ने बताया कि गंगा के तट पर आसीन होकर भगवान की दिव्य लीलाओं को श्रवण करते हुए प्रयाण करने की तैयारी कर ली थी, कि उनको पहले से खबर पड़ गई थी कि मैं 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। फिर उन्होंने सारा राज्य जो है वो अपने पुत्र को दे दिया और खुद चले गए गंगा के किनारे पर भगवान की कथाओं को श्रवण करने के लिए। और जितने दिन तक यानी 7 दिन तक वो कथा श्रवण कर रहे थे, ना तो उन्होंने कुछ भोजन खाया, ना ही जल ग्रहण किया और ना ही एक क्षण के लिए भी सोए, यानी सततम कीर्तयंतो, कंटिन्यूअस वो भगवान की कथाओं का श्रवण कर रहे थे और इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो श्री बाबा जी बताए उनकी सारी बातें आश्चर्यजनक हैं और उनके कार्यकलाप ध्यान से सुनने योग्य हैं, क्योंकि ये भगवान के परम भक्त हैं। भगवान के परम भक्त, जब इनका जन्म हुआ था ना, तभी समस्त जितने ऋषि थे उनसे जब पूछा गया था इनके भविष्य के विषय में, तब उन्होंने बताया था कि यह जो परीक्षित महाराज हैं वो बहुत बड़े सम्राट बनेंगे, इनके अंदर सारे दिव्य गुण होंगे, ये धर्म में महाराज युधिष्ठिर की तरह होंगे, क्षमा करने में पृथ्वी की तरह होंगे और प्रजा से स्नेह करने में माता पिता की तरह होंगे, यानी इनके अंदर कोई दोष नहीं होगा, ये संपूर्ण गुण दिव्य गुणों से युक्त होंगे ये, और इनके विषय में सब कुछ बताया गया। यहाँ तक कि ये भी बताया दिया गया था कि श्रृंगी ऋषि के कारण इनको श्राप मिलेगा और 7 दिन पहले इनको इनकी मृत्यु के विषय में पता चल जाएगा और ये अंत समय में गंगा के किनारे पर बैठकर सुखदेव गोस्वामी के द्वारा श्रीमद् भागवतम महापुराण का श्रवण करेंगे। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो इसको बहुत डिटेल से हमें सब पता चलेगा कि ये इनके विषय में पहले से ही भविष्यवाणी हो गई थी कि ऐसा उनके जीवन में होगा। तो ऋषियों ने ये सबसे पहले सब कुछ पहले ही घोषणा कर दी थी। वास्तव में भक्तों, कुछ लोग कहते हैं कि महाराज परीक्षित अगर इतने उनके अंदर शुद्ध गुण थे, इतने दिव्य गुण थे, फिर उनसे ये अपराध कैसे हो गया कि उन्होंने एक साधु के गले में मृतक सर्प कैसे डाल दिया। ये अपराध वास्तव में देखा जाए तो ये कोई अपराध था ही नहीं, क्योंकि वो राजा थे और राजा का कर्तव्य है कि प्रजा कैसे जा क्या क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कौन साधु है, कौन ढोंगी है, उनके विषय में जानने का प्रयास करे। जब महाराजा परीक्षित सम्यक मुनि के आश्रम में आए तो उन्होंने जल की याचना की कि मैं राजा हूँ, मैं आपसे जल प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने इस प्यास को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वो उस ब्रह्मास्त्र से उस समय बचे जब वो गर्भ अवस्था में थे। जब वो ब्रह्मास्त्र की पीड़ा को सहन कर सकते थे तो क्या वो महाराजा परीक्षित प्यास की पीड़ा को नहीं सहन कर सके? लेकिन यह एक राजा का कर्तव्य है। वो ये देखना चाहते थे कि कहीं ये कोई ढोंगी तो नहीं है। जिस तरह से आज भी हम जाते हैं कहीं कहीं, कभी ऐसा होता है वृंदावन में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, कोई कोई नौटंकी लोग होते हैं, कभी कभी तो छोटे बच्चे भी आता हुआ देखेंगे, भाई भक्त आ रहे हैं, तिलक लगा हुआ है, तो ऐसे साधु की तरह बैठ जाएंगे, फिर आंख खोल के देखेंगे कहीं वो हमें देख रहे हैं, पैसे वैसे देंगे इस तरह। तो ये राजा का कर्तव्य होता है। वो देखना चाहते थे कि अगर देखो अगर ढोंगी होता तो क्या होता, वो सर्प को देख कर चिल्ला उठता, ओ चीख कर खड़ा हो जाता, ढोंग से तपस्या अपनी छोड़ देता। लेकिन सम्यक मुनि वास्तव में तपस्या कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, ये उनकी परीक्षा कर रहे थे महाराजा परीक्षित, और ये उनका अधिकार था। और परीक्षा करने का देखो, राजा है और इतने सत्यवादी राजा हैं कि परीक्षा करने का उनका जो तरीका था वो भी कैसा, कि अगर वो सही सन्यासी हैं, सही तपस्वी हैं, तो फिर उनकी तपस्या का खंडन नहीं होगा। बस एकदम ऐसे आराम से गले में डाला सा, उनकी तपस्या तो भंग नहीं हुई ना। अगर वो नॉट ऐसे ही ढोंगी होता तो फिर उनकी तपस्या वो खुद ही, क्योंकि ढोंगी होता तो उड़ जाता। तो ये राजा का कर्तव्य था, उन्होंने अपने कर्तव्य, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि क्योंकि उनके सिर पर सोने का मुकुट था और कलयुग ने उन पर आक्रमण किया था जिसके कारण से उन्होंने ऐसा किया, परंतु नहीं, ऐसा श्री प्रभुपाद जी नहीं बताते। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ये एक राजा का कर्तव्य था और उन्होंने अपना कर्तव्य निभाते हुए ये कार्य किया। और अपराध कब होता है, जब जिसका अपराध हो रहा हो वो मानता हो कि अपराध है, लेकिन सम्यक मुनि जब अपनी तपस्या से उठे तब उनको जब पता चला कि श्रृंगी उनके पुत्र ने उनको यह श्राप दिया है, तो वो बहुत क्रोधित हुए श्रृंगी के ऊपर और कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। ये महाराजा जो परीक्षित हैं वो इतने शुद्ध पवित्र राजा हैं और इनको तुमने इतना बड़ा श्राप दे दिया, ये तो उनकी कोई गलती ही नहीं थी, ये तो उनका कर्तव्य था, उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। गलती किसने की, अपराध किसने किया, उस श्रृंगी ऋषि ने अपराध किया कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि महाराजा का क्या कर्तव्य है। उन्होंने बस ये देखा कि मेरे पिता का अपमान हुआ, वास्तविक अपमान तो उस राजा का हुआ था। इतना बड़ा राजा त्रिलोक की जिस समय, उस समय सब संपूर्ण सृष्टि का राजा था वो, और वो एक ऋषि के आश्रम में आया। ऋषि का कर्तव्य था कि उनको आसन देता, उनको बिठाता, उनको है ना कुछ प्रसाद देता, उनको जल पिला, जल तक नहीं पिलाया, उनको बिठाया तक नहीं, तो ये कितना बड़ा अपमान किया उन्होंने इस राजा का। वो राजा जो समस्त ऋषियों का पालन कर रहे थे, वो राजा जो समस्त प्रजा को अपनी संतान की तरह रख रहे थे। हमारे घर में कोई साधारण भी अगर व्यक्ति आता है तो हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम उनका सत्कार करें, उनको बैठने के लिए आसन दें, उनको जल पूछें। ये इतना बड़ा राजा एक ऋषि के घर पे आया है और ऋषि ने उनकी सत्कार के लिए, राजा जो है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है इस संसार में। अगर कोई शुद्ध राजा होता है तो उसी के कारण, यहाँ पर हम अभी पढ़े थे श्री प्रभुपाद ने बताया था कि उनके राज्य में राज्य वैभव संपन्न था, उसमें प्रचुर अन्न दूध और धातुएं थी और सारे पर्वत तथा नदियां शक्ति से ओतप्रोत, यानी इतना उनका राज्य संपन्न था और इतना पवित्र राज्य था। जब राजा पवित्र होता है और पूरे पवित्रता के साथ, दिव्यता के साथ अपनी प्रजा का पालन करता है, तो प्रकृति जो होती है वो अपने सारे जितने उसके अंदर धातुएं होती हैं, जो भी उनके अंदर मूल्यवान वस्तुएं होती हैं, वो प्रसन्न होकर वो सब लुटाती। तो इसीलिए प्रकृति के विषय में बताया कि जितने भी पर्वत थे, जितनी नदियां थी, वो सब शक्ति से ओतप्रोत थी। तो ऐसे जो प्रतापी राजा थे, ऐसे पवित्र राजा थे, वो एक ऋषि के द्वार पर आए थे याचना करने के लिए कि मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। एक दरिद्र कोई आए ना अगर दरवाजे पर, तो एक ऋषि का कर्तव्य है कि उसकी जल उसकी तृष्णा मिटाए। लेकिन एक इतना बड़ा सम्राट, जो आप जो आज संपन्न जीवन गुजार रहे हो, वो इस पवित्र राजा की पवित्रता के कारण, और उसको एक ग्लास पानी तक नहीं पूछा, तो अपमान किसका हुआ? उस ऋषि का तो अपमान हुआ ही नहीं, अपमान तो वास्तव में महाराजा परीक्षित का हुआ। लेकिन धन्य है वो कि उन्होंने इस श्राप को भी स्वीकार किया। ये महाराजा परीक्षित जो कलयुग को आने से रोक सकते थे, क्या वो इस श्रृंगी ऋषि के शाप से नहीं बच सकते थे? वो बच सकते थे, वो इसका विरोध कर सकते थे, परंतु उनकी महानता है कि उन्होंने इस शाप को श्रोधारी किया। और उन्होंने ऐसा क्यों किया, वही बता रहे शौनक ऋषि, प्राहुर्भागवतोत्तम, क्योंकि वो भगवान के प्रथम श्रेणी के भक्त थे। उत्तम श्रेणी के भक्त जो होते हैं वो कभी भी साधुओं का निरादर नहीं करते, चाहे वो आपके साथ गलत व्यवहार भी करें तो भी कभी उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करते, बल्कि विनम्रता के साथ उनके व्यवहार को, उनके उसूलों को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर महाराजा परीक्षित के गुणों के विषय में बताया, और श्लोक नंबर 10 में क्या बताया, यहाँ पर एक सुंदर प्रश्न पूछा और वो कहते हैं, सम्राट कस्य वा हेतु पांडूनां मानवर्ज। सम्राट, सम्राट माना वो महाराजा परीक्षित जो थे, कस्य वा हेतु, किस कारण से पांडूनां मानवर्धन, वो क्योंकि उनके कारण पांडु कुल का मान जो है वो वर्धन हो रहा था, उनके कारण कुल संपन्न हो रहा था, पांडुओं की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी, वो इतने वैरण्य थे कि उनके कारण समस्त पांडवों का नाम, उनकी प्रतिष्ठा, उनका सम्मान बढ़ रहा था। तो फिर कस्य वा हेतु, ऐसा क्या हो गया था, प्रायोपविष्टो, प्रायोपविष्टो का मतलब होता है आमरण अन्नशन, यानी ऐसा उपवास कि जब तक मृत्यु नहीं आएगी तब तक, मतलब मृत्यु आने तक वो कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। मतलब वो इतने समृद्ध थे, इतने महान राजा थे, जिनके कारण पांडवों का सारा इतना वैभव बढ़ रहा था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो गंगा के तट पर आके बैठ गए और फिर ये प्रतिज्ञा की कि मैं कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पीऊंगा नहीं, ऐसा क्या हुआ था? तो ये आम सब जानते हैं कि उनको श्राप मिला था, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन ये पूछ रहे हैं बस। तो ऋषि ये जानना चाहते हैं कि जब उनके राज्य में कोई गड़बड़ी नहीं थी, सब कुछ ठीक था, श्री प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं कि श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि तो फिर वे क्यों सारा साम्राज्य त्याग कर गंगा के किनारे पर आमरण अनशन करने के लिए बैठ गए थे। वो आश्चर्य था और सारे ऋषि इस आश्चर्य का कारण जानने के लिए उत्सुक थे। वो पूछना चाहते थे, क्यों जानना चाहते थे, क्योंकि इस इन प्रश्नों के कारण भगवान की कथा सुनाई दे और सुनाई देगी, और ये पता चलेगा कि इन 7 दिनों में उन्होंने जो सुना वही जो है वो आपके जीवन का कल्याण करेगा। उसी से एक जीव जो कि मृत आसन पे होता है, एक मनुष्य जिसकी मृत्यु होने वाली होती है, उसे क्या करना चाहिए, और ये सब विषय में हमें पता चलेगा। और आगे पूछ रहे हैं श्लोक नंबर 11 में, कभी कभी ऐसा होता है कि जीव जो है वो अपने भौतिक स्थिति से इतना घबरा जाता है कि जिसके कारण वो इस भौतिक स्थिति को त्याग देता है और फिर वो संन्यास ग्रहण कर लेता है, या फिर है ना जंगल में या कहीं चला जाता है। लेकिन ये परीक्षित ऐसा नहीं था, उसका राज्य बिल्कुल संपन्न था। और कभी कभी ऐसा होता है जीव फ्रस्ट्रेट हो जाता है शत्रुओं के कारण, उनके जो उनको, क्योंकि लाइफ में इतनी डिस्टर्बेंस होती है कि वो सोचता है कि ये सब छोड़ छाड़ के चला जाओ। या कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादातर क्या होता है, बूढ़े हो जाते हैं 50 साल की उम्र के बाद वानप्रस्थ संन्यास ले। लेकिन यहाँ पर ऋषि लोग पूछते हैं, नमन्ति यत्पाद निकेतमात्मनः, नमन्ति माना झुकते हैं, यत्पाद निकेतनम उसके पाँव के नीचे, आत्मनः अपने, क्यों कौन, शिवाय हानि धनानि शत्रवः, कि अपने कल्याण के लिए वो क्या करते हैं, सारे जितने शत्रु भी थे, उनके जितने भी शत्रु थे, वो अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा धन जो है वो लाकर उनको कर के रूप में दे देते। कभी कभी ऐसा होता था, जैसे होता क्या है कि राजा लोग कर वसूल करते हैं, उनके पास इतना कर जमा नहीं होता है जिसके कारण उनके राज्य में गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन इनका तो कितना सुंदर राज्य है वो बता रहे हैं, इनको शौनक मुनि को पता है। नमन्ति यत्पाद अनिकेतम आत्मनः, कि उनकी चरणों में आकर, उनके चरणों के नीचे अपने कल्याण के लिए, आत्मनः शिवाय यानी अपने कल्याण, उनको पता था कि जब इस राजा का ना हमारे सिर पर आशीर्वाद होगा तभी हमारा कल्याण होगा, किसको, शत्रवः, ना केवल उनके मित्रों को बल्कि जो उनके शत्रु थे वो भी उनके चरणों में झुकते थे, आकर अपना संपूर्ण धन उनको अर्पण करते थे, और वो समझते थे कि ये इतना पवित्र राजा है, इसके अंडर में रहकर ही हम सुखी रह सकते, तो जितने उनके शत्रु थे वो भी उनके अंडर में ही रहते थे। या एक बात समझने की है कि कुछ लोग कहते हैं कि भक्तों का कोई शत्रु नहीं होता, लेकिन यहाँ पर शत्रवा लिखा हुआ है, यानी पहले कहा गया कि वो कौन है, भगवान के प्राहुर भागवतोत्तम, भगवान के उत्तम भक्त, फिर उनके यहाँ पर बताया गया कि उनके शत्रु भी उनके चरणों में, तो वो भगवान के उत्तम भक्त थे फिर भी उनके शत्रु कैसे हो सकते हैं। हाँ, कुछ लोग का ऐसा मत होता है कि उत्तम भक्तों के कोई शत्रु नहीं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि महाराज परीक्षित के शत्रु थे और वो उनके चरणों में आकर झुकते थे, इसका मतलब ये हुआ कि शत्रु होते हैं। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा जित्वा शत्रुन, कि आप अपने युद्ध करो और अपने शत्रुओं को जीत लो, यानी कि जो अधर्मी होते हैं, जो धर्म के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं वो उनके शत्रु होते हैं, क्योंकि भक्तों का काम क्या होता है, धर्म का प्रचार करना, और जो धर्म को पालन नहीं कर रहे हैं वो हमारे यानी भगवान के भक्तों के शत्रु होते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि जो शत्रु थे उनके, वो भी क्या करते थे, नमन्ति यत्पाद अनिकेतनम आत्मनि, कि उनके चरणों में आकर झुक रहे थे, और आत्मनः शिवाय हानि धनानि, अपनी रक्षा के लिए, अपने शिवाय मतलब कल्याण के लिए क्या करते थे, वो अपना सारा धन, अपनी सारी संपत्ति लाकर उनके चरणों में रख देते थे। और यहाँ पर फिर पूछ रहे हैं, कथम स वीरहस्य मंग दुस्तया, कथम स वीरा, वो इतने वीर थे फिर भी, श्रेय माना उतना इतना ऐश्वर्य जिसका त्याग करना, अंग ही अंग, यानी उसको बोल रहे हैं सुत गोस्वामी को, कि आपसे पूछ रहा हूँ कि इतना दुस्तया का मतलब होता है बहुत मुश्किल होता है, इतना संपन्न राज हो, अरे हमारे पास तो थोड़ी सी जो अगर थोड़ा सा भी धन होता है, थोड़ा सा भी ऐश्वर्य या सम्मान मिलता है तो उसको त्याग कर एकाएक जंगल में जाकर बैठना या भगवान की कथाओं का श्रवण करना, ये होता नहीं। आजकल का जीव जो थोड़ा सा भी उसके ऊपर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और वो है ना थोड़ा सा मान मर्यादा या फिर पॉलिटिक्स में थोड़ा चला जाए तो फिर क्या वो सोचेगा कि बस अभी मेरे भक्ति करने के दिन नहीं है, अभी तो मुझे ना ये सब काम इतने ज्यादा है, ये सब मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ये करना है, कथा श्रवण करने का समय नहीं है मेरे पास। लेकिन ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं श्री मंग दुस्तवा, में ये सब को त्यागना बहुत ज्यादा कठिन है, और वो ऐसा भी नहीं कि वो बड़े बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ बता रहे हैं युवा शतोत, वो बहुत ही उत्सृष्टम अहो, उत्सृष्टम का मतलब होता है त्याग दिया, अहो का मतलब होता है अरे, यानी इतना आश्चर्य बता रहे हैं शौनक मुनि, अरे इतना बड़ा राज्य, इतनी संपन्नता, इतना वैभव, एक ही शत्रु भी डर रहे हैं, हर एक चीज संपन्न है, जो नदियां हैं, पहाड़ हैं, वो सब प्रचुर मात्रा में अपना सारा धातुएं दे रहे हैं, अन्न प्रचुर मात्रा में है, दूध सब कुछ इतना अच्छा है और राज्य इतना अच्छा चल रहा है। युवेश तो वो बहुत जवान है, फिर भी उत्सृष्टम अहो, अरे फिर भी त्याग दिया, त्यागने के लिए तैयार हो गए। और ये सब वैभव तो त्यागा तो त्यागा, साहसु भी, यानी अपने जीवन को त्याग करने के लिए भी तैयार हो गए, तो ऐसा क्यों? उनका संपूर्ण राज्य था, कुछ भी ऐसा नहीं था उनके जीवन में जो अवांछनीय। श्री प्रभुपाद जी बोले सब कुछ एकदम परफेक्ट था, वह नव युवक थे, शक्ति थी, ऐश्वर्य था, जीवन भोग, जीवन का संपूर्ण भोग था और सक्रिय जीवन में जिसमें सब कुछ संपन्न हो, भोग हो, उससे विराम लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। और क्योंकि भौतिक दृष्टि से हर कुछ एकदम संतुष्ट प्रद था, तो मुनि ये जानना चाहते थे ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया, युवा अवस्था में गंगा जी के किनारे पर बैठ गए और भगवान की कथाओं का श्रवण किया। तो हम ये सब कुछ डिटेल से सुनना चाहते, क्यों सुनना चाहते? क्योंकि इसी से आत्मा सुप्रसिद्ध होती है। भगवान और भगवान के भक्तों के विषय में जब चर्चा होती है, उसी से आत्मा संतुष्ट होती है। तो मुनि गण जो है वो प्रश्न पूछते जा रहे हैं, इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ पूछेंगे, हम सब साथ में सुनेंगे और उसका लाभ लेने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। आप सब कृपया साथ रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।